ओम शांति। कितना बड़ा सौभाग्य है माउंट आबू की पहाड़ियों पे और चारों ओर कितना साइलेंस, विशेष ज्ञान सरोवर परिसर। योग में कितना अच्छा लग रहा था, जैसे सन्नाटा छा गया। उसमें बैठ के योग तपस्या भट्टी का चांस मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। लकीली चांस मिला है। क्यों? क्योंकि हमेशा विंग्स के प्रोग्राम होते थे, लेकिन बलिहारी कोरोना की, जिस कारण दीदी ने बीकेज के प्रोग्राम बुक किए, फिर उनको चेंज करना मुश्किल था। तो मीटिंग में बताया कि भट्टियां बुक हुई हुई हैं अक्टूबर तक की, अब वैसे ही चलेंगे। इसलिए शुक्रिया निर्मला दीदी का, उनके लिए ताली बजाओ। आपसे मिल तो नहीं पाए, स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, लेकिन वो आपको निरंतर सकाश भी दे रही हैं दादी कॉटेज से। और ज्ञान सरोवर निवासी तो इतने खुश, खुशी का पारावार नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को खुशी कब होती है मालूम है? कब? कितने भी वीआईपी जाएं, फिर भी पब्लिक है ना, कंटेक्ट सोल है ना, संपर्क वाले है ना, नहीं। और बाबा के बच्चों तो वो तो बेचारे अभी कुछ उनमें लेके जाएंगे वाइब्रेशन, कोई कोई धारणा में फिर जाके पालन करते। ये सारी पवित्र आत्माओं से ये 5-6 महीना पूरा ज्ञान सरोवर इतना श्रृंगारित रहा है, उनको बहुत खुशी है आप सबके आने की। हाँ, वातावरण सारी पवित्र आत्माएं अवतरित हो जाएं और खूब भट्टी करें, कितना अच्छा लगता है। आज का टॉपिक है प्रवृत्ति में रहते प्रभु प्रेम का पात्र बनकर कैसे लगाव मुक्त रहें। तो मेजॉरिटी प्रवृत्ति वाले ही भाई बहन आए हुए हैं। टीचर बहनों ने सोचा होगा ये तो प्रवृत्ति वालों की टॉपिक है, इसलिए योग के बाद कुछ काम भी होते हैं, चले गए, प्रस्थान किया। लेकिन दो प्रकार की प्रवृत्ति, आप सबकी तो है घर गृहस्थ की प्रवृत्ति, समर्पित बहनों की भी प्रवृत्ति है, नहीं है? है ना? जिन्होंने भी देखा होगा दीदियों को, और आप समझते होंगे कि हमारी जिम्मेवारी तो थोड़ी है, इनकी जिम्मेवारी हमसे भी कई गुना है कितने बच्चों को संभालना, बाबा के बच्चों को कितना कार्य करना, जैसे आपके कारोबार ऐसे इनके भी कितने कारोबार। तो प्रवृत्ति तो जो भी आत्मा शरीर धारण किए हुए है उसको प्रवृत्ति है ही है, तो हम सब की रिलेटेड टॉपिक है ना। लगाव मुक्त कैसे बने और साथ प्रभु प्रेम का पात्र कैसे बने, प्रवृत्ति में रहते हुए फिर भी हम फोकस करते हैं। ज्यादातर जो प्रवृत्ति वाली आत्माएं आई हैं, किस तरीके से वो प्रभु प्रेम के पात्र बने। कईयों के घर, हम शुरू में ज्ञान में चले, एक बार कहां गए, चेन्नई गए, एक युगल के घर हमें, मैं उसका नाम भी भूल गया, हम भी नहीं थे उस वक्त, साल हुआ था, तो 78-9 की बात है, ऐसी छाप पड़ी, ऐसा वाइब्रेशन, ऐसी छाप पड़ी, मैंने किसी सेंटर का भी ऐसा वाइब्रेशन नहीं देखा था। वंडरफुल। मैं तो मतलब देखता ही रह गया, ऐसा वाइब्रेशन, इतनी अलौकिकता, इतना ढंग से हर चीज व्यवस्थित। भोजन पे बैठे तो बाबा की याद का वो चले, फिर भोजन बीच में बोलना नहीं, बड़ा योग्युक्त। घर में इतनी स्वच्छता, प्रवेश करते हुए हम जूते बाहर उतार के फिर पानी बीच में पास करना, उसमें पैर धुलाई करके तब कोई अंदर आएगा। इतना मैं देखा और मुझे तो लगा कि ये साक्षात जैसे कोई लक्ष्मी नारायण रह रहे हो, इस तरीके सारा मेरे को लगा उनका। बाद में जब कहीं सेंटर पे पहुंचे, निमित बहन से कहा, हम तो बहुत इन्फ्लुएंस के, आप ही नहीं, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि कुमार का दादी आए तो कहा उसके भाई के घर में ठहरना है, वहां ठहरी थी। मतलब इतना कहते, जितने महारथी आते हैं वहां जरूर ठहर, वहां का वातावरण और वो सब देखो, प्रवृत्ति वाले भी उदाहरण बनते हैं ना। एक उदाहरण यूनिक है सारे इंस्टीट्यूशन में, आप सब भी जानते हैं, बता सकते हैं कौन होगा? कहानियों में सुनते होंगे, चरित्रों में सुनते होंगे। प्रवृत्ति का उदाहरण है, विश्व भर में प्रसिद्ध है, बताओ कौन होगा? किसी को टच होता है, कौन होगा? है दादी, क्या बोल रहे? हाँ ठीक, कोई कोई ने बोला रमेश भाई, उषा बहन का घर किस किस ने देखा है? मैंने तो देखा है। अच्छा, दो तीन हाथ और। कभी कभी मैं भाग्य की बात सोचता हूं, कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है। जहां तक मैंने सुना है कि मातेश्वरी जगदम्बा, चाहे बीमारी के कारण, पर ये कितना बड़ा लक, मैंने सुना है 18 मास उनके घर में ट्रीटमेंट के लिए रही, इससे बड़ा कोई भाग्य होगा नहीं। मैंने रमेश भाई जी को कहा था, मैं कमाल है, क्या पुण्य आपके पूर्व जन्मों के किए हुए, मातेश्वरी जगदम्बा उसके निकट, जिसको 5 मिनट मिलने के लिए उस टाइम भी तड़पते थे, कभी आएगी 3-4 साल में हमारे पास, तब मिल पाएंगे, तब भी लाइनें होती थी 5, और आपको 18 मास संग मिल गया उनका। कारण कोई भी बना, पर आपका कोई कर्मों का खाता तो जरूर है, बहुत बड़ा नहीं? तो ये फॉर्च्यून, जब उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ कानपुर में, बाबा को बताया गया वहां वाले भाई बहनों ने, तो बाबा ने कहा मधुबन आ जावे, फिर उसके बाद बॉम्बे भेजेंगे ट्रीटमेंट। तो रमेश भाई ने बॉम्बे से फोन किया, बाबा इमीडिएट इसमें करना होता है, तो आप मधुबन बुला रहे हैं फिर बॉम्बे भेजेंगे, तो क्यों ना कानपुर से सीधा ही बॉम्बे आवे मम्मा। बाबा ने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं बॉम्बे में रहेगी कहां। तो रमेश भाई ने कहा कमाल है बाबा, हमारा जो लौकिक स्थान है वो हमारा तो रहा ही नहीं, बाबा का है, वो आपका ही स्थान है और मम्मा का ही है, मम्मा बाबा का है, तो मां को सोचने की जरूरत है मैं कहां रहूं, उसका अपना मकान है ना ये तो। बाबा ने एकदम यस किया, ठीक है कानपुर से बॉम्बे बुला लो। बाबा ने कहा मेरे बुलाने से कौन भेजेगा बाबा, आप फोन करेंगे उन्हें कानपुर वालों को, तब वो मानेंगे, मेरी तो मानेंगे भी नहीं। तो फिर बाबा ने ही किया फोन, फिर बॉम्बे गई। कहना होता है निमित्त, आप समझो नंबर वन आत्मा, क्या समझते हो इतना टाइम बीमारी से क्या जूझती रही होगी, सोचिए। कोई कोई पूछ लेते हैं, कई बार दादियों के भी लास्ट मोमेंट में हरेक के हिसाब किताब, दादी प्रकाशमणि थे, काफी टाइम बॉम्बे हॉस्पिटल और उधर रहे, मनोहर दादी जो यहाँ ज्ञान मानसरोवर के थे इंचार्ज, वो भी कोमा में और यहाँ हॉस्पिटल में थे। कहीं कहते हैं इतना पुरुषार्थ सारी उम्र जिन्होंने किया, ये क्यों ये लास्ट में हमें देखा नहीं जाता, हमें अच्छा नहीं लगता। इनको तो जैसे ब्रह्मा बाबा का हाथ में हाथ था ऐसे जाना चाहिए था। क्या जवाब देंगे? अरे इतना तप किया, दिन रात सेवा किया, फिर भी कर्म भोग नष्ट नहीं हुआ क्या? कह रहे हैं कर्म भोग है। बताइए जिसको कोई टच होता उत्तर तो हाथ खड़ा करो। हैं? हैं? ये है उत्तर, बिल्कुल ठीक। एक्चुअली राज ये है, आज की डेट में महाराष्ट्र जोन और खासकर बॉम्बे को बाबा नरदेशावर कहते हैं, ठीक है ना? एक कहावत है पंजाब का अमीर दिल्ली का गरीब और बॉम्बे का फकीर, तीनों बराबर हैं। मतलब वो बहुत ही धन नगरी, पंजाब में कोई कितना अमीर होगा वहां का फकीर के पास भी करोड़ों होगा। छोटी सी दुकान है केवल 50 गज की, उसका कीमत भी पूछो तो कहेंगे 20 करोड़ होता ही है वहां तो, छोटा सा जिसने कुछ बना लिया। तो उस मायावी नगरी का उद्धार करना कोई महारथी आत्मा चाहिए थी ना। देखो दीदी मनमोहिनी भी शरीर छोड़ा था तो बाबा के विदाई देते हुए शब्द थे कि बच्ची ये भोगना नहीं है, ये योजना है। तो इनके हमें लगते हैं हिसाब किताब, लेकिन कोई योजना होती है बाबा की, तो योजनाबद्ध सब कुछ चल रहा होता है। तो मम्मा हाफ डे वहां दिखाती थी टाटा कैंसर में, रमेश जी लेके जाते थे, अनिला बहन रमेश की जी की बहन वो डॉक्टर थी, वो साथ जाती थी। बाबा को यही कहा, बाबा डॉक्टर भी है घर में, डॉक्टर जरूर चाहिए पेशेंट को साथ में। तो आधा दिन वहां और आधा दिन शाम को फिर कहीं ना कहीं बॉम्बे में, उस मातेश्वरी जगदम्बा की दृष्टि, उनकी वाणी, उनका वो सब कुछ मिलता रहा। आज सारी इंस्टीट्यूशन में महाराष्ट्र बॉम्बे नंबर वन है। ये मम्मा की हुई सेवा का रिजल्ट, वो सेवा इतना बीज पड़ा। आज निर्मला दीदी थोड़ा स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, नहीं तो उनसे हम कई बार अनुभव सुनते हैं कि मैं कैसे कॉलेज पढ़ती थी आती थी। मम्मा की पालना लेके वो बाबा कितने माहर थी, मम्मा की पालना लेके रमेश भाई वहां तैयार हुए, निर्वैर भाई जी वहां तैयार हुए, कितनों को पालना मिली। तो पीछे कुछ राज होता है। और दूसरा कारण महारथियों को जो हिसाब किताब कई बार देखते हूं, कर्म भोग शब्द उनके लिए अच्छा नहीं लगता, वो भोगना तो भोग ही नहीं रहे होते। हमने तो बहुत निकट से देखा है, सदा है, बहुत अच्छी स्माइलिंग फेस। चाहे दादी थी, गुलजार दादी का तो हैरान होते थे डॉक्टर, जब कैंसर था, कीमो कीमो में उस वक्त इतना एडवांस नहीं था, तो इतनी चीखे मारते थे पेशेंट, और गुलजार दादी एक बार भी नहीं, जरा सा पेन भी नहीं फील, और बिल्कुल डिवाइन डिविनिटी स्टेज। हमारे डॉक्टर अशोक मेहता का तो उनकी स्थिति को देख के ही जन्म हुआ, वो बाबा के बन गए, जो कैंसर सर्जन नंबर 1 जिन्होंने किया वहां बॉम्बे में, मधुबन आए बाबा, सह परिवार बाबा के बन गए। फिर ये ग्लोबल हॉस्पिटल के भी वही प्रेरणा स्रोत हैं, वो डायरेक्टर वही रहे काफी समय, और बॉम्बे भी वही रहे। तो आप सोचिए उनकी व्याधि कितना बड़ा चैप्टर इतिहास जोड़ गई बाबा के यज्ञ में। कहना ऐसे होता है, लेकिन मनोहर दादी कोमा में थी, कोमा जैसी तो बढ़िया मौत ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद डॉक्टर अशोक मेहता और सारे डॉक्टर बैठे थे निवेद जी के पास भोजन पे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोमा में कोई इंजेक्शन लग रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो पेशेंट को नहीं कहते, जरा भी नहीं, उसे तो पता ही नहीं, वो तो स्वीट साइलेंस, देखने वाले भले दुखी हो रहे हैं, वो सुखी है बाबा की गोद में, और बाबा चरित्र दिखाता है ऐसी आत्माओं, और लास्ट में हिसाब क्लियर करके आत्मा उड़ जाती है। तो इसलिए प्रवृत्ति का उदाहरण रमेश जी बाबा के सामने ऐसा बने, बाबा उनका मुरलियों में नाम लेते हैं रमेश उषा का। प्रवृत्ति में प्रभु प्रेम का पात्र बनना है तो प्रवृत्ति में कुछ सुंदर से विचार देता हूं। एक तो घर में बाबा का कमरा जरूर बनाओ। अच्छा, जितने भी बैठे हैं जिनके घर में बाबा का कमरा बना हुआ है जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, बना हुआ है, एक घर में बाबा का कमरा जरूर होना चाहिए। बाबा का कमरा जो है वो क्या होता है बाबा के कमरे में एक जैसे घर का मालिक ही बाबा बनता है। जिन्होंने नहीं बनाया मधुबन से ये संकल्प करके जा सकते हैं, चाहे छोटा सा कर्टेन भी लगा के, लेकिन बाबा का कमरा जरूर बनाना चाहिए। कमरे थोड़े हैं, दो कमरे हैं, तो कॉर्नर में ही कर्टन लगा के भले बाबा का कमरा बनाए, तो बनाना जरूर चाहिए। बहुत आपकी अवस्था में फर्क पड़ जाएगा, प्रभु प्रेम के पात्र बन जाएंगे। फिर बाबा के कमरे में फिर ये भावना बिठा लो कि इस घर का मालिक ये बैठा है कमरे में, और जब भी जाए, जैसे बड़ों को पूछ के जाते हैं, बता के जाते हैं, आते भी बड़ों को रिपोर्ट करते हैं, तो ये एक आदत से बना लें, जब घर से जाएं बाबा के कमरे में बाबा से छुट्टी लेके जाएं, पूछ के जाएं, सारा समाचार दे के जाएं, लक्ष्य ऊंचा लेके जाएं, और जब वापस आए आते ही फिर बाबा को समाचार उसका भी देवें। ठीक है, करेंगे करेंगे। जो कहते हैं जाते ही हम बाबा का कमरा जरूर बनाएंगे अपने घर में, अभी तक नहीं बनाए लेकिन अब जरूर बनाएंगे, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा अच्छा, खड़े हो जाओ अपने स्थान पे। देख लो टीचर बहने कौन कौन, एक महीने में बना लेंगे, एक बना लेंगे। अच्छा, फिर कमरे का उद्घाटन कराना है, ठहरो बैठो, नहीं बैठो नहीं, एक मिनट। हाँ, एक महीने में कमरे का उद्घाटन कराना है, अपनी दीदी को बुला के, ठीक है, निमित्त बड़ों को बुला के। ओके, बैठ जाओ। अब इन सब के लिए तालियां बजाओ, बड़ी अच्छी बात है, जरूर बनाना, बहुत ही अच्छा रहेगा। और सूचना देना, पानीपत बैठा है, जलंधर बैठा है, जलंधर और भी बैठे होंगे, जलंधर बहुत जाना होता है हमारा। अभी भी 15-20 दिन पहले गए थे और पानीपत तो होते ही है, पर हमें फोन करके बताना, फोन तो है ना, होगा जरूर, हर एक की दीदी के पास है, तो उनसे लेके खोल लिया जी कमरा, एक मैसेज भेजना, बाबा का कमरा स्थापन हो, हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो ये भी एक घर को आश्रम की तरह बनाने वाली बात, बाबा का कमरा बनाओ, फिर कमरा बना के कोशिश करो वहां अमृत वेला योग जरूर करो। अमृत वेले तो सेंटर पे आ नहीं पाते, 4 से 4:45 वहीं करो, उसमें थोड़ा रेड लाइट का भी प्रबंध हो, सब हो, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और फिर जब जाओ बाबा से पूछ के, छुट्टी लिए बिना नहीं जाना, आते ही बाबा को जरूर रिपोर्ट, बहुत आपको इससे फायदा होगा। ये एक आदत बना लें। मैं पानीपत सर्कल में जितनी टीचर बहने हैं, 52 सेंटर सब सेंटर हैं, हर मास भट्टी होती है, सब इकट्ठे होते हैं, तो उसमें फिर हम ये बात उनसे जब रखते हैं उनके सामने कि मेजॉरिटी सब ये बताते हैं, आदत ही बन गई है हर सेंटर पे, कोई जाएगा पहले बाबा के कमरे में फिर जाए, कहीं दिन में चाहे 4 बार जाना पड़े, 6 बार जा, आते ही सीधा बाबा के कमरे। बहनों ने तो पक्का किया हुआ है। ऐसे ही आप सब भी पक्का करें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रवृत्ति में रहते जो बाबा को भोग भी लगाते हैं, भोग लगाना होता है ना, तो भोग कौन कौन लगाते हैं? अच्छा, बहुत सुंदर, भोग जरूर लगाएं, जो नहीं लगाते वो भी लगाएं, लेकिन शुद्धि हो पूरी, सेंटर की तरह भोजन पूरा पवित्र शुद्ध बाबा की याद में बना हुआ, पहले भोग के बर्तन बने हुए हो उसमें भोग डाल के फिर डालो और फिर सबको वितरण करो। ये भी अवस्था बहुत, ये प्रभु प्रेम के पात्र बनते जाएंगे, इन चीजों से ही प्रभु प्रेम के पात्र बनते जाएंगे। जो बाबा ने नियमावली बनाई हुई है उन नियमों पे पूरा चलेंगे, ऑटोमेटिकली प्रभु प्रेम के पात्र हम बनते ही जाएंगे। ठीक है, परंतु एक बात ध्यान रखना, मैं तो ज्ञान में चलती हूं, मेरे बच्चे नहीं चलते या पति नहीं चलता, अब उसको क्या करूं, प्याज लहसुन भी पसंद है। अच्छा, मैं तो अपना नहीं, प्याज लहसुन वाली सब्जी का भोग नहीं लगाना ये तो बाबा के इंसल्ट है ना ये नहीं सोचना इसको दृष्टि देंगे ठीक हो जाएगा, ना ना, ना। ठीक है, कोशिश करो घर में पूर्ण शुद्धि लाने की, उन सबको भी कन्विंस करो, पर भोग की तो जो प्यारे बाबा का नियम है सेंट्रो पे वैसा ही भोजन, तब मैंने कहा वैसा ही भोजन। अच्छा, आप में से पूछते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए जो बहनों की तरह पूरे खान पान के सब नियम अपनाए हुए, बाजार का नहीं खाते, कहीं का नहीं खाते, घर में बहू है पुत्र वधु धारणा में नहीं है उसके हाथ का भी नहीं खाते, रिश्तेदारियों में भी नहीं, उसमें दिवाली आ रही, दिवाली में भी कोई मिठाई आदि कुछ नहीं, जो दादियों के नियम जो दीदियों के नियम वो हमने स्ट्रिक्टली अपनाए हुए हैं, जिन्होंने बिल्कुल दीदियों की तरह ही खान पान की शुद्धि के नियम अपनाए हुए हैं, जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, फिर भी अच्छे हैं, कितने होंगे, मैक्सिमम 100, अच्छी परसेंटेज है, कई जगह सेंटरों पे जाते भट्टी कराते पूछते बहुत थोड़े हाथ होते हैं, बाबा ने कहा, कोई कहते ये मजबूरी ये मजबूरी ये मजबूरी, बाबा ने कहा जो मजबूत नहीं है ना उनको मजबूरियां हैं, जो खुद मजबूत है उनको कोई मजबूरी नहीं, उनको सहयोग देंगे, योगी को सब सहयोग देंगे, परिवार वाले भी देंगे। हमें कोई वो भी नहीं बन जाना है रूढ़ के उनको कहें हमें नहीं पसंद कुछ भी, हम भिखारी के हाथ का नहीं खाते हैं ऐसे हम नहीं खाएंगे। अच्छा कल को बीमार पड़ गई, बिल्कुल बेड पे हो गई, फिर क्या करेंगे? आश्रम पे तो नहीं रखेंगे, ना खिलाएंगे फिर। तो भाषा बड़ी अच्छी हो, प्यार से युक्ति से कहें बहुओं को भी, बेटे कोई आपसे वो नहीं है, तू हमारी बच्ची है, प्यारी बच्ची है। लेकिन गुरु को एक जैसे वचन दिया होता है ना, तो इसलिए उसकी पालना कर रहे हैं। वचन तोड़ना भी एक पाप होता है ना, तो आप वचन को निभाने में सहयोग देंगी ना। देखो राम जी ने वचन का पालना किया, सहयोग दिया ना सबने, भरत ने भी सबने। तो जब तक क्या वचन दिया भी, जब तक शरीर में जान है कर सकते हैं। तो चलो हम योग युक्त मेडिटेशनल चार्ज्ड भोजन लेना है। हाँ अगर कल को लाचार हो गए तो सेंटर की भी मना नहीं है, फिर बेटे कहाँ जाएंगे, तेरे हाथ से ही खाएंगे, है ना। दोनों रास्ते बना के रखेंगे ना, कहीं लास्ट में बेड पे बिल्कुल हो जाते हैं, फिर दीदियां उनको छुट्टी देती हैं। खैर बच्चे भी कॉपरेट करते हैं, प्याज लहसुन आदि तो नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है शुद्ध उसको भोजन प्रदान करते हैं। पर वो हो गया जो बिल्कुल लाचार है और दीदी ने छुट्टी दी, उस पे फिर भी उसका बोझा नहीं होगा। लेकिन जो शोकिया ही खाते रहते हैं, मिठाई आ गई, दिल कैसे रुके अब उसके बिना, चमचम आ गई दिवाली की, बताओ इतना त्याग तो बाबा नहीं किया जा सकता। अब रिश्तेदारी में जाएं नाराज हो जाएंगे, अरे हमने तो भाइयों को देखा है, भाई रिश्तेदारी में जाते हैं, बुजुर्ग भाई तो भी वो नियम के पक्के हैं, शुरू में फील करते हैं, खुद बना के उनको भी खिलाते, खुद बना के खाते, शुरू में करते हैं, बाद में तो उसको पूजनीय पूज्य समझते हैं। तो मजबूत जो होगा ना उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो बाबा को भोग भी लगाएं, प्रवृत्ति में अगर हो सके ट्रैफिक कंट्रोल के गीत भी बजे, बजते हैं किस किस के घर में, सारे गीत बजते हैं, थोड़े है ना 10-15-20-25, तभी तो लगेगा गृहस्थ आश्रम, ये भी कोई घर आश्रम से कम नहीं है। ऐसे नहीं कोई चीज कहां पड़ी है, कोई कहां अस्त व्यस्त, सब कुछ सफाई भी ध्यान नहीं, सब चीजों पूरा, कोई आए तो लगे सेंटर, ठीक है ना। और जिनको दीदी स्वीकृति दे तो एक भावना जरूर होनी चाहिए जीवन में कि क्यों ना घर गीता पाठशाला बन जाए। बना हुआ है ना कईयों का, किन किन का बना हुआ है घर गीता पाठशाला, बना है 10-15 है। तो गीता पाठशाला बनना माना सेंटर बनना। जीवन में ये पुण्य तो करना चाहिए। आज भी मुरली में था ना, क्या रूहानी हॉस्पिटल खोलो बच्चे, तुम्हारा गली गली में खुल जाएगा। पर हम एक कहते हैं ब्राह्मण बन के कोशिश करनी चाहिए। अक्सर बाबा हफ्ते में जरूर, हफ्ते 10 दिन में कह देता ये रूहानी हॉस्पिटल खोलो, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलो, रूहान ये करो, कितना पुण्य, क्योंकि लगातार वहां पुण्य चलता रहेगा और वो उसका शेयर आपके अकाउंट में भी जाता रहेगा जो निमित्त बना। तो आप में से जो बाबा के बच्चे निमित्त ऐसे बन सके, बड़े भाग्यशाली हैं वो। कई ऐसे बाबा के बच्चे निमित्त बने हुए हैं। एक हाँ, कम से कम एक सेंटर खोलने के निमित्त जरूर बनना चाहिए। एक बार दादी प्रकाशमणि ने प्रोग्राम रखा था, शायद 88 की बात है, जिन्होंने जमीन दिया या बाबा को मकान दिया उन सब का अभिनंदन समारोह, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। तो बताइए कितने भाग्यशाली हैं वो, हजारों आत्माओं ने ऐसे दिया है। आप में से कौन कौन है जिन्होंने सेंटर को जमीन दिया है या मकान बना के दिया, कोई है ऐसा महावीर या वीरांगना बैठी हो, हाथ खड़ा करो। नहीं है, कोई नहीं है, एक, ओके, एक दो, गुड, थोड़े है ना होंगे। पर बाबा ने कल परसों के मुरली में बड़ा अच्छा बताया, अच्छा बच्चे पैरों पे खड़ा हो जाए तब तक तो कई ऐसे कर रहे हैं, कई जगह बाबा की मुरली में जब आता है ना यूनिवर्सिटी खोलो सेंटर, मेरे को फोन कई बार करते, भाई साहब एक कोई सेंटर खोलना है और उसका किराया हम देंगे, कोई एक साल कहता, कोई तीन साल कहता, सेंटर जरूर खोलना है उसके निमित्त, फिर वो पैरों पे खड़ा हो जाता है सेंटर, फिर तो कोई बात नहीं। ऐसे एक आत्मा है तो बाहर की, वो पंजाब जोन से बाहर की है जो मेरे कोच, उसने मुझे बताया ऐसे कर 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 के मैंने, प्यारे बाबा ने मुझे 21 सेंटर खुलवाने के निमित्त बनाया। क्योंकि वो सब बहनों को ऑफर कर देता था, वर्ष में उसका टारगेट था ऐसे 2 सेंटर मैंने करवाने शुरू, तो वो खोलते थे, उसका सामान भी ला देता था, फिर किराया का पक्का कमिटमेंट रहता था, फिर उसके बाद नेक्स्ट दो ऐसे करता गया, खुलते गए, तो 21 के निमित्त बना, कितना बड़ा भाग्य बना। एक और बाबा का बच्चा मिला, वो पंजाब से ही है, उसने कहा जी मैंने पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ा एमएलए का, थोड़े वोटों से हार गया, खैर अपार संपत्ति थी, इतने में ज्ञान में चल पड़ा, ज्ञान में चलने के बाद मधुबन आया, मधुबन बाबा के कमरे में पांडव भवन में बैठा तो बाबा, उसे लगा चेतन में बाबा आ गए। बाबा ने कहा बच्चे अब ये पॉलिटिकल में अब तुझे नहीं जाना है। अच्छा बाबा फिर मुझे क्या करना है? बच्चे तुम बाबा के अब सेंटर खोलो। अच्छा बाबा मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं 11 सेंटर खोलूंगा। तो मुझे उसने बताया 10 सेंटर खरीद के भी, एक पे 1.5 करोड़ खर्चा, एक पे करोड़ खर्चा, एक पे 70 लाख, खरीद के 10 सेंटर तैयार कर चुका है, 11वें के लिए तलाश में है। कैसे कैसे रतन बाबा के। अच्छा बाबा तो गरीबों को भी मौका देता है, एक तो वो है सेंटर निर्माण करके देना, एक दूसरा तरीका ये कितना अच्छा निकला कि चलो एक साल के लिए जिम्मेवारी ली और किराया दिया, किसी भी साइड में खुलवाया, एक साल के लिए 3 साल। अच्छा चलो लास्ट तरीका ये तो कर ही सकते हैं, गीता पाठशाला अगर दीदी परमिट करती है अपने घर में, गीता पाठशाला के निमित्त, वो भी कोई कई गीता पाठशालाएं सेंटर से भी ज्यादा काम कर रही हैं, 100-100 की क्लास है, वंडरफुल। तो ये कोई कम बात है? अच्छा चलो वहां आपके मोहल्ले में पहले से खुली हुई है तो दीदी को कह दो किसी भी स्थान पे एक कमरा लेना है ना गीता पाठशाला के, मेरी इच्छा है निमित्त बनना है, जहां खोलना है खोलो, पर हम सहयोग देंगे, वर्ष तक देंगे, 2 वर्ष। कितना बड़ा पुण्य कर्म बनेगा। ठीक है बनेंगे निमित्त, बनेंगे, कौन कौन बनेंगे करो, दोनों हाथ खड़े करो 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 करो, वाह करो करो, हिम्मत करेंगे तो बाबा ताकत देंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो घर का ऐसे प्रभु प्रवृत्ति में रहते प्रभु प्रेम के पात्र बन जाएंगे। और लगाव मुक्त बनने के लिए क्या करना है, क्या करना है? लगाव मुक्त बनने के लिए मेरा 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 करेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, और तेरा 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 करेंगे तर जाएंगे। बस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। अपने अंदर से पूछ के देखो, क्या मैं समझती हूं, समझता हूं ये मेरा घर, लौकिक घर, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा, या ये सचमुच मुझे बाबा का लगता है ये, और मैं इसमें मेहमान हूं। क्या मेहमानपन की वृत्ति है? मेरा तो है ही नहीं, बाबा का है। ना आपका पास कुछ था जब आए थे, ना कुछ रहने वाला है ना, खाली आए थे, खाली जाना है। फिर ये मेरा मेरापन, ये तो ठीक नहीं है ना। उस मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है, उससे लगाव मुक्त होंगे। मेरे बच्चे, मेरे युगल, मेरी ये, मेरा 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 नहीं। बाबा ने सर्विस साथी दिया हुआ है, ठीक है, बाबा ने सेवा के निमित्त ये बच्चे दिए हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है मेरे बच्चों को, उसके बच्चे हैं उनको संभालने की ड्यूटी दी है, बड़े आज्ञाकारी बन के संभाल रही हूं, पर बाबा के हैं, मेरे नहीं है। नर्स होती है ना, देखो पेशेंट की रात दिन खड़े होकर सेवा करती है, 15 दिन बाद पेशेंट शरीर छोड़ जाए तो वो बिलखती या रोती या दुखी नहीं होती, भाई मैंने ड्यूटी की, डॉक्टर ने जो दी थी, अभी 7वां का पाठ। उसी की जगह मां होती है, कितना परेशान ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में ही कितना परेशान होती। तो बाबा भी कहते कि बच्चे ये बाबा ने तुम्हें ड्यूटी दी है, इसलिए तुम क्यों परेशान होते? लगाव की निशानी क्या है? उसके दुख में दुखी, उसके सुख में सुखी। बच्चा बीमार है तो माँ पिता को पहले बुखार चढ़ जाता है, बार बार उसका सोच, बार बार उसका सोचा, ठीक है दवाई तो दिलाओ, लेकिन उसकी परेशानी में परेशान क्यों? एक बहन थी पानीपत में, उसके बच्चे को स्कूल में पता नहीं क्या सीढ़ियों से गिरा, क्या हुआ, एकदम बेहोश हो गया, इंजोर हो गया, हॉस्पिटल ले गए, प्रिंसिपल सारे टीचर वहां हॉस्पिटल में, मां को फटाफट मैसेज दिया मां बाप को, और वो बेहोश हो हॉस्पिटल में बिल्कुल नर्म। तो वो गई, सारे सिर झुकाए हों कि पता नहीं क्या क्या बोलेगी, रोएगी बहुत, वो करेगी, तड़पेगी, क्या स्कूल में बच्चे का वो हो गया। उसने, उन्होंने कहा जी बहुत अफसोस है, बच्चा ऐसे अचानक। कहते अफसोस की क्या बात है, इस आत्मा का कोई हिसाब किताब था, हुआ, और ये चीज तो ड्रामा में नूंद थी, इसको कोई नियति को कोई रोक नहीं सकता था, और आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो कार्मिक अकाउंट होता है। प्यार से बच्चे को भी दृष्टि दी, वो किया, डॉक्टरों को भी थैंक्स किया, प्रिंसिपल आदि सबको रिलैक्स, पर वो सारे हैरान हो गए, मां है कौन है, ना रोई ना बिलखी ना वो तड़फी ना हमें कुछ कहा। फिर उन्हें जब पता लगा कि ब्रह्म कुमारीज में जाती, हैरान हो गए कि ऐसा ज्ञान, इतना ताकत इस आत्मा में। मैंने बाद में उस बहन से पूछा, मैं कहा आपने ऐसी कैसी स्थिति बनाई, इसमें तो कितनी ज्ञानी भी हों वो भी रो पड़ते हैं, तड़फ जाते हैं। उसने मुझे कहा जब जब बाबा ये कहते थे ना कि बच्चे विनाश, और बच्चे तुम्हारे सामने, बच्चे भी मरे पड़े होंगे, सब ऐसे होगा, तब क्या होगा, तुम्हारा योग लगेगा क्या तो मैं अपना टेस्ट करती थी, विजुलाइज करती थी कि मेरे सामने ही ये हुआ पड़ा है, वो सारे हैं, तो क्या मैं उस वक्त रोऊंगी तो नहीं, क्या मुझे उस वक्त पक्का है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कहते ऐसी मैंने विजुलाइज कर करके पक्का किया, आज प्रैक्टिकल वो पेपर हो रहा है, पर ये तो मैं कई बार विजुलाइज करके कर चुकी हूं, और मैंने पक्का सोचा था नहीं पास विदानर होंगे। तो देखो स्थिति बनाई ना, इतना मौन आओ, कहीं आते हैं भट्टी में जैसे फ्री होंगे फिर घर फोन करेंगे पप्पू को उसको, घड़ी 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 घड़ी, ये मौ की तो निशानी है ना। अरे आए हो चार दिन, इसको मोबाइल को तो बंद करके साइलेंट भट्टी में ही डाल दो उसको, बहुत इमरजेंसी है, चलो रात को एक बार देख लो कोई मिस कॉल है एक आधी, पर मेजोरिटी कम कम से कम, क्योंकि अटैच है ना, अटैच होगी बार बार बुद्धि जाएगी, यही तो लगाव मुक्त होना है, इन्हीं चीजों से लगाव मुक्त होना है ना, प्रवृत्ति में रहते लगाव मुक्त, एक बाबा से लगाव हो और किसी से ना हो। तो ये था आज का विषय, बाबा के प्यार में डूब जाओ, बाबा से जिसने सर्व संबंधों का अनुभव नहीं किया ना वो लगाव मुक्त नहीं हो सकते। गुलजार दादी ने एक बार सुनाया, जब वो छोटे थे 13-9 वर्ष में तो आई 13 वर्ष, कहते मैंने एक बार बाबा को कहा, बाबा हमें तो शर्म आती है, आप कहते हो सर्व संबंध, बाबा को अपना बच्चा भी समझो, हम खुद बच्ची हैं, उसको कैसे बच्चा समझे, बाप तो समझेंगे टीचर भी सतगुरु, वो मेरा बेटा है, ये मन ही नहीं मानता भगवान को बच्चा। बाबा ने कहा बच्ची अगर तू उसे बच्चा नहीं समझ के अनुभव करेगी ना तो फिर क्या होगा, जब आगे चल के छोटे छोटे बच्चों को देखेगी तो तुझे बहुत अट्रैक्ट करेंगे, फिर बाबा को भूल जाएगी। कई घरों में देखा है बच्चा सामने आते उसे पट पकड़ के सारा दिन चूमते रहेंगे, वाह मेरे बच्चों वाह मेरे बच्चों, फिर वो तो वो बच्चों तो भूल ही जाएगा, ये क्या है। तब बाबा कहते सर्व संबंधों का अनुभव बहुत जरूरी है, एक भी संबंध मिस ना करो तब लगाव मुक्त बनेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।